ओम शांति। हम सबके बीच में आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी उपस्थित हैं। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी, 1969 से ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन, चिंतन और अनुभव कर रही हैं। आपने 1972 से विश्व की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। आप मधुबन में ही रहते हैं। मधुबन से पूर्व आपने 21 वर्ष गुजरात में अपनी अथक सेवाएं दी। आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग के। दीदी से हम सभी परिचित हैं कि दीदी की विशेष अभिरुचि है योग। योग पर आपकी बहुत गहरी पहुंच है। आज हम सबको मर्जीवा जीवन का लक्ष्य ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, इस विषय पर अपने अनुभव युक्त, हमारे जीवन के उपयोगी सार गर्भित महावाक्य उच्चारित करेंगी आदरणीय दीदी।
ओम शांति। अच्छा लग रहा है हाँ? मन लग रहा है मधुबन में हाँ? बात तो करते हैं हम कि मधुबन तपोभूमि है, पर जब प्रैक्टिकल तप करने आए हैं तो क्या हाल है हा? क्या हाल चाल है बहुत अच्छा बाबा कहते थे क्या बताना है, कोई पूछे कि क्या हाल चाल है तो क्या जवाब देना है। तो हाल बड़ा खुशहाल है खुशहाल पीछे वालों के हमारी खुशी अपने आप में है, बाबा में है ना। बाबा कहते हैं ना, बच्चे यहाँ आओ और रिफ्रेश हो जाओ। तो रिफ्रेश किससे होना है? ज्ञान और योग से। पहाड़ियों में घूमकर नहीं वो चेंज तो चाहिए चलो, पर हम रिफ्रेश होते हैं ज्ञान की गहराई से, है ना, बड़ों के अनुभवों से। तो हाल बड़ा खुशहाल है हा? मुस्कराया सबने हा? देखो एक दो के सामने हा? एक दो के सामने देख के मुस्कराओ जरा हा? खुश है ना सभी हा? आप तो खुश है पर बाकी सब भी खुश है ना, देख लिया। और खुशी में क्या होता है फिर है? कहते हैं ना, जब बहुत खुशी है तो क्या कहते, हमारे पांव भी धरती पर नहीं है, ऐसे कहते हैं। खुशी में नाच उठते हैं, उड़ने लगते हैं ना, खुशी के मारे हल्के हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि चलो कहो कि चाल कैसी है, चाल कैसी है हा? हाल तो खुशहाल है पर फिर खुशी में चाल कैसी है हा? फरिश्तों की है? हम खुशी में बहक नहीं जाते हैं, लोग तो खुशी में बैठ जाते हैं ना। हिंदी समझ में आ रहा है नहीं तो ट्रांसलेट करो, कर रहे हैं ना। खुशी होती है तो बहक जाते हैं ना कई दुनिया में, तो और ही बहिर्मुख हो जाते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है तो हम तो सूक्ष्म हो जाते हैं। फरिश्ता हो जाना माना माइक्रो बन जाना, सूक्ष्म बन जाते है ना। हम और मर्ज हो जाते अपने स्वरूप में और अपने बाबा में, समा जाते हैं ना, मर्ज हो जाते हैं। तो हम सबका मर्जीवा जन्म है, सबका हो चुका है ना जन्म। पक्के मर्जीवे हैं हम। स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक काव्य आता था कि हरि का मार्ग, हरि माना भगवान, हरि का मार्ग है शूरवीरों का मार्ग। भगवान के रास्ते पर चलना माना हिम्मत चाहिए, बहादुरी चाहिए, शक्ति चाहिए, महावीरों का मार्ग। और उसमें आता है प्रथम मस्तक रखो, फिर उसका नाम लो। माना इतना मरने की हिम्मत चाहिए कि भगवान का बनते ही मरना होता है। तो हम सबका अनुभव क्या है हम सबका अनुभव क्या है? भगवान के दर पर आए हैं तो सबसे पहले कलियुगी संस्कारों से मरना होता है। तो अब एक मिनट साइलेंस में बैठो और फिर अपनी डायरी में लिखो कि कलियुगी संस्कारों से हम मर गए हैं। स्वदर्शन करो और फिर इसका जवाब लिखो, है ना। नोट पेन लाए हैं सभी? नहीं लाए भाई? डायरी पेन लाए हैं? हाँ, तो लिखो अपनी डायरी में कि कलियुगी संस्कारों से हम मर गए हैं। एक साल तो हो ही गया होगा, एक साल से अधिक वर्ष वाले हैं ना सभी। हाँ, तो मरने में तो कितना टाइम लगता है हाँ, मरने में तो सेकंड लगता है ना। तो पूछो, बाबा सामने हैं और सभी खास आए हैं ना तपस्या के लिए और बातों से फारिग है, तो शांति से बैठकर बाबा को देख के फिर देखो कलियुगी संस्कारों से मर गए हैं। बाबा कहते हैं ना कि देह भान भूलना, संबंधों को भूलना, इस दैहिक दुनिया को भूलना, वो तो फिर भी हो जाता है पर संस्कार रह जाते हैं ना। तो संस्कार से हम मरे हैं। मैंने अभी मुझ आत्मा के संस्कारों में कलियुगी गंदगी तो नहीं है ना कोई, देख लो फिर लिखो कितना परसेंटेज मरे हैं और कौन सा कलियुगी संस्कार बार बार जिंदा होता है, ये दो जवाब लिखो। बाबा कहते हैं छोटे मोटे तो खत्म हो जाते हैं पर कड़े संस्कार रह जाते हैं। जो डीप रूटेड संस्कार है उनको तोड़ने में टाइम लगता है ना, तो वो कौन सा संस्कार है कलियुगी जो अब नहीं होना चाहिए इस नए जन्म में पर है, कुछ परसेंटेज में भी है, तो वो पर्टिकुलर कौन सा है, वो एक कड़ा संस्कार लिखो। बाकी तो हम बदल देते हैं, कड़े संस्कार को बदलने में ही मेहनत लगती है ना। दिखाई दिया खुद में, दिखाई दिया आपने, देखा होगा ना कोई कागज का कचरे का ढेर जलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना, तो वो कौन सा है जिसके लिए हम खुद भी समझते हैं कि ये मेरे में नहीं होना चाहिए पर है अभी भी, बार बार जागता रहता है। इसी संस्कार से मुझे भी विघ्न आते हैं, सेवा में भी विघ्न आते हैं, संगठन में भी विघ्न आते हैं। इससे अवस्था डाउन हो जाती है। दो जवाब लिखे, कितने परसेंटेज में मरे हैं हम और कलियुगी कौन सा कड़ा संस्कार अभी भी है। दो जवाब लिखे, माताओं ने लिखे, समझ में आ रहा है माताएं पीछे कि नहीं समझ में आ रहा है, लगता है नहीं तो ट्रांसलेट करो, कर रहे हैं कोई, ठीक है। ओके, अब दूसरा, वो कड़ा संस्कार क्यों है मेरे में। कोई भी चीज काम की हो तो हम रखते हैं ना, काम की ना हो तो फेंक देते हैं। वो संस्कार है तो वो क्यों है, मैं किस काम में ले रही, उसके द्वारा मैं कौन सी क्या पाना चाहती। मान लो मेरे में गुस्से का संस्कार है, हम समझते तो हैं कि नहीं करना चाहिए पर क्यों है। सूक्ष्म सूक्ष्म में कई बार हम ऐसा मानते हैं, समझते हैं कि दूसरे बुद्धू हैं, मैं होशियार हूं, इसलिए गुस्सा आता है कि वो समझ नहीं रहे। तो सूक्ष्म में अभिमान है, दूसरे को कम समझते हैं, अपने को ज्यादा ऊंचा समझते हैं, है ना। कोई हम शरीक पर गुस्सा थोड़ी ज्यादा करते हैं, कमजोर है, छोटे हैं, हाँ दुनिया में आप देखते हैं ना, उस पर लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं। हम अपने को कुछ ज्यादा समझते हैं तब गुस्सा आता है ना, माना मैं गुस्सा करके क्या पाना चाहती हूँ। कई कहते हैं ना भाई, थोड़ा तो रोब रखना पड़ता है तभी सब कंट्रोल में रहते हैं, है ना। तो अंदर में है ना कि गुस्से से मुझे कुछ प्राप्ति है, अच्छा मुझे ईर्ष्या होती है, मान लो मेरे में ईर्ष्या का कड़ा संस्कार है। क्यों क्यों है, खुद में योग्यता नहीं है आगे बढ़ने की, और दूसरे बढ़ रहे हैं तो ईर्ष्या होती है, होता है ना। अच्छा खुद का स्वमान नहीं है तब तो कंपेयर कर रहे हैं, तब तो मैं कंपेयर करती हूं ना कि भाई ये आगे बढ़ते हैं मैं नहीं बढ़ पाती। ये बहुत अच्छा भाषण करते हैं, इनका मान है मेरा नहीं है, माना मेरा लो एस्टीम हुआ ना, कम स्वमान हुआ। तो ईर्ष्या क्यों आती है, एबिलिटी नहीं है, एस्टीम स्वमान नहीं है। कहता है ना दूसरे से कंपेयर करना माना खुद का इंसल्ट करना है, अपने आप का इंसल्ट करना है, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी मेरे से ऊंचा है ये स्वीकार कर लिया है। मुझे कोई देहधारी का आकर्षण होता है, मान लो कोई कड़ा संस्कार है, देहधारी का प्यार चाहिए। क्यों आकर्षण होता है, जरूर बाबा से प्यार नहीं ले पाते हैं, खुद देहभान से न्यारे नहीं है, तब तो आकर्षण होता है। तो जो कड़ा संस्कार आपने लिखा ना, कौन समझते हैं कि अभी भी कड़ा संस्कार है, तो हाथ ऊपर करें, हाँ मैं उसमें अटकी हुई हूं। बहुत अच्छा, अब उसका बीज ढूंढो, क्यों है मेरे में। मैंने उदाहरण दिए ना दो तीन, अब आप अपने कड़े संस्कार का बीज रूट कॉज निकालो कि ये मेरे में क्यों है, इनसे मुझे क्या चाहिए, वो मुख्य चीज है। वो रूट कॉज मिलेगा ना तो हम रूट से खत्म कर सकेंगे। नहीं तो ऊपर ऊपर से घास काट लेंगे तो फिर क्या होगा, वापस उगने लगेगा ना। तो ऐसे ही होता है ना, थोड़ा दिन ठीक रहते हैं, फिर कोई कारण बनता है, कोई संग मिलता है, कोई वातावरण ऐसा मिलता है, फिर वो संस्कार जाग उठता है। तो हम सोचते हैं ना, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 25 साल हुआ, 40 साल हुआ, अभी तक ये संस्कार जाता क्यों नहीं? क्योंकि हमने रूट से नहीं निकाला। तो वो बीज ढूंढो, मैं क्यों गुस्सा करती हूं, मैं क्यों ईर्ष्या करती हूं, मुझे क्यों मान शान चाहिए, मुझे क्यों देहधारी का आकर्षण होता है। कहीं हमारा कुछ अंदर रॉन्ग कंसेप्ट है, उसको निकालना है। वो बीज ढूंढना है। देखो मिलता है आपको, गहराई से सोचो, क्यों ये संस्कार है? भल दूसरे नहीं जानते हैं, खुद में ही युद्ध चलता है। अपना अंदर का चित्र हम ही जानते हैं, है ना? दूसरे तो बाहर से जानते हैं ना कि भाई ये तो पुराने हैं ज्ञानी, ये सीनियर है, ये समर्पित है, ये सर्विसेबल है, ये हमारे अनन्य है। दूसरे तो हमें बाहर से जानते हैं ना, पर मेरा अंदर का चित्र तो मैं जानती हूं ना। इसलिए मुझे ही गहराई से सोचना होगा, कई बार हम सोचते हैं कि चलता है चलता है। आई थी ना एक मुरली कुछ दिन पहले त्याग की, उसमें कैसे ही होता है हम अपने आप को चलाते रहते हैं, क्योंकि दूसरों को तो पता नहीं है ना। हम रियलाइज नहीं करते हैं कि ये एक कड़ा संस्कार मुझे फेल कर सकता है। बाबा कहते हैं ना, जो तुम्हारी कमजोरी है वही तुम्हारा पेपर बनने वाली, वही तुम्हारा पेपर बनती है। हम सोचते हैं ना कि बाकी तो सब कुछ मैंने परिवर्तन कर दिया है, बस थोड़ा सा ये है ना, बस थोड़ा सा है, पर एक में फेल माना तो फेल ही होगा ना। और बाबा कहते हैं ना, वो एक कमजोरी ही और कमजोरी के आने का दरवाजा बन जाती है। तो रियलाइजेशन चाहिए, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये मेरे में गलत संस्कार है। है ना, हम गलत क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हम समझते नहीं है कि ये गलत है। गहराई जब शांति से बैठते हैं, बाबा के सामने अपने आप को कंपेयर करते हैं, देखते हैं, तो समझ में आता है फिर उस पर गौर करना चाहिए, फोकस होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के बाद डीप रियलाइजेशन चाहिए, गहरी महसूसता चाहिए कि अगर ये कमजोरी आज नहीं कल बाहर आ जाएगी तो मेरा सारा पानी फेर जाएगा। मुझे उससे खत्म करना ही है, ये दृढ़ता चाहिए। और फिर रोज पुरुषार्थ चाहिए कि उस कमजोरी को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए मुझे कौन सा गुण धारण करना है, कौन सी शक्ति धारण करना है। तब हमें महसूस होगा कि मैं पूरा मरजीवा बनी हूं, शुद्रपना, पतितपना आता है ना मुरली में शब्द बाबा के महावाक्य, बंदरपना खत्म हुआ है। नया जन्म कौन सा है? अलौकिक, ये लौकिक है, शारीरिक जन्म है ना? हमने अलौकिक नया मरजीवा जन्म लिया है। बाबा की उसी मुरली में था, हर कर्म अलौकिक हूं। हर कर्म अलौकिक हूं। कोई मुझे देखता है नहीं देखता है। मैं अकेली हूं या संगठन में है, सेवा में है या घर में है, ज्ञानी है अज्ञानी है। हर हाल में, हर चाल में, हर वेश में, हर देश में मुझे अलौकिक रहना है। बाबा की यही विशेषता गाई हुई थी ना, बाबा की क्या विशेषता गाई हुई थी कि जब भी बाबा को देखा, जहां भी देखा, बाबा विशेष ही सदा दिखाई दी। कभी कहीं भी बाबा को हल्का साधारण नहीं देखा। तो हमें भी ऐसा ही बनने का पुरुषार्थ करना है ना? क्या विचार है सबका? ऐसा ही है ना? कि थोड़ा बहुत बनना है। क्या विचार है? थोड़ा बहुत बनना है या बाबा जैसा ही? बाप डॉक्टर बने और बेटा कंपाउंडर बने, चलेगा? क्या बोला? मतलब आपके पुरुषार्थ का कोई महत्व ही नहीं है, न लक्ष्य है, है ना? ड्रामा में आपका क्या है आपको पता ही नहीं है, तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए ड्रामा वाले भाई बोलो? बेस्ट बनने का होना चाहिए। भई आप पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट में क्या आएगा वो तो पता नहीं है, पर जब आप पढ़ाई करते हैं तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट बनना है। ड्रामा पर छोड़ना माना लक्ष्य नहीं है। ऐसे नहीं बनना है। हमारा फर्ज है अंत तक जिगरी पुरुषार्थ करना। बाबा कहते हैं जो दिल से पूरी ताकत लगाकर पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा के तरफ से ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। वरना बाबा कहेगा उसने तो अपनी ताकत नहीं लगाई है, तो ग्रेस मार्क्स की बात ही नहीं है, है ना? इसलिए मर्जीवा बनना है। शूद्र से पक्का और सच्चा ब्राह्मण बनना है। हमें किसी को देख के नहीं बनना है, किसी से पूछ के नहीं बनना है, पर खुद का कॉन्शियस क्या कहता है, है ना? खुद का कॉन्शियस जवाब देता है ना। हमारा अपना ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप हमें बताता है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बताता है ना। अब हम आगे की बात करेंगे। अब बात है ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। पहले तो पक्का और सच्चा ब्राह्मण बनना है। जो ब्राह्मण जीवन में पास नहीं है वो फरिश्ते की स्टैंडर्ड में जा नहीं सकता है। ब्राह्मण जीवन में पास होता है, अर्थात जो कर्म में विजयी है वो सूक्ष्म में विजयी बनने का पुरुषार्थ कर सकता है। इस साकार लोक का प्रैक्टिकल ब्राह्मण जीवन सफल है तो आकारी फरिश्तेपन में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मण बनना फाइनल मंजिल नहीं है। कई बार हम खुश हो जाते हैं ना कि हम रोज क्लास करते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, हम डिवाइन मैनर्स अपनाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, बाबा से मिलने की परमिशन मिल जाती है ना। पर फिर बाबा से मिलकर क्या करना है? पवित्र योगी ब्राह्मण जीवन का उपयोग क्या करना है? आपने कोई चीज बनाई तो उपयोग करनी है ना, काम में आनी चाहिए ना। इस पवित्र योगी ब्राह्मण जीवन का उपयोग मैं क्या कर रही हूं? बाबा ने एक मुरली में कहा था, पवित्र बनकर पवित्र जीवन का उपयोग पढ़ाई और सेवा में करना। कौन सी पढ़ाई? फरिश्ता बनना। कि नेक्स्ट भाई, आपने 12th में 80% 90% आप ले आए तो आपके लिए मार्जिन है कि आप आगे हायर कोर्स ज्वाइन कर सकते, मेडिकल में जा सकते, इंजीनियरिंग में जा सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते। तो 12वीं पास करना मंजिल तो नहीं है ना, वो सिर्फ योग्यता है जिससे आप आगे की पढ़ाई कर सकते। तो ब्राह्मण बनने से हम योग्य बनते हैं फरिश्ता बनने के लिए। संगम युग का संपूर्ण फरिश्ता ही सतयुगी देवता कहा जाएगा। वही देवता बनेगा। जिस स्थिति से संगम युग को एंड करेंगे उसी स्थिति से सतयुग स्टार्ट करेंगे, समझे ना बात। यहां जिस ऊंचाई तक पहुंचेंगे वही लेवल से सतयुग शुरू करेंगे आप। अब ये साइलेंस में बैठ के फिर स्वदर्शन करना है कि ब्राह्मण जीवन में क्या परिवर्तन करें जो फरिश्ता बने। शूद्र जीवन में परिवर्तन किया तो ब्राह्मण बने, ब्राह्मण जीवन में क्या परिवर्तन करना है जो फरिश्ता बने। ब्राह्मण जीवन ऑलरेडी ज्ञानी जीवन है, पवित्र जीवन है, योगी जीवन है, सेवाधारी जीवन है, सहयोगी जीवन है। दुनिया की तुलना में बहुत अच्छा ऊंचा जीवन है, पर हमारी मंजिल तो उससे भी आगे हैं। तो ब्राह्मण जीवन में मुझे कहां क्या चेंज लाने की जरूरत है जो मैं फरिश्ता बनूं। अब सोचो, बैठो, अलग अलग बैठो, थोड़ा जगह है भाइयों के तरफ, आगे आ जाओ, आगे आगे खुले बैठ जाओ, थोड़ा बहने भी बैठ सकती, आगे आओ, एक दो से खुले होके बैठ और अपनी डायरी में लिखो हरेक को स्पष्ट है कि हम बन गए नहीं हैं, बन रहे हैं। ये तो स्पष्ट है ना? दुनिया के आगे अभिमान नहीं करना है, हम भी बन रहे हैं। कौन बना रहा है? बाबा बना रहा है। मम्मा की मुरली में सुना था ना, बाबा की आज्ञा फरमान डायरेक्शन पर बनना है। और वो तो किसको मिलते हैं? बाबा के डायरेक्शन फरमान किसको मिल रहे हैं? किसको? हमें। दुनिया तो जानती ही नहीं है भगवान आया है, हम जानते हैं। हम रोज भगवान के डायरेक्शन ले रहे हैं, तो डायरेक्शन तो मिल रहे हैं ना। तो अब आपको क्या लगता है, ब्राह्मण जीवन में कहां चेंज करना है? आत्मा है ये। खुद खुद का जवाब लिखना, एक दो की डायरी में नहीं देखना। स्वदर्शन करना है और आप ज्ञानी तो आत्मा है, बाबा के पक्के बच्चे हैं, तब आप मधुबन भट्टी में आए हैं। खुद देखो, अभी भी ब्राह्मण जीवन में मुझे कहां सुधार करने की जरूरत। कर्म में वाणी में मनसा विचारों में वाइब्रेशंस में vibrations कई बार हम बोलते नहीं हैं पर अंदर से डिस्टर्ब है, वो vibrations दूसरे को पहुंचते। बाबा मुरली में कहते हैं ना कि तुम क्लास में बैठते हो, योग में बैठते हो, तुम्हारा बुद्धि योग भटकता है, वायुमंडल खराब करते हो, कहते हैं ना बाबा, क्योंकि मेरी भटकन दूसरे को भी प्रभावित तो करेगी ना। वाइब्रेशन, सूक्ष्म भाव, भाव इमोशन, पूछते हैं ना हम, आपने ये शब्द बोला भाव क्या है, भाव क्या है। कई बार शब्द ठीक बोलते हैं और भाव गलत होता है, कई बार शब्द कड़े हैं पर भाव अच्छा है। समझते हो ना भाव को, भावना, हमारी भावना क्या है सबके प्रति। फीलिंग्स, शुभ भावना रखो बाबा कहते हैं, हमारी दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं है। वृत्ति, व्यक्ति किसी को सहयोग दे रहा है, देखने में कि भाई वो सहयोग दे रहा है, वो व्यक्ति कहती मुझे इनका सहयोग नहीं चाहिए, मैं इनका इंटेंशन शुद्ध नहीं है। वृत्ति क्या है, स्मृति, कॉन्शियसनेस, सूक्ष्म में कौन सी स्मृति है, ये हमारा टोटल व्यक्तित्व है। शुरुआत कर्म से बाबा कराते हैं कि कर्म में विकार नहीं आने चाहिए, कर्म में कंट्रोल कराते हैं। सबसे बड़ा व्रत धारण हो जाता है ब्रह्मचर्य, कर्म में वासना कंट्रोल। पर कर्म के बाद सूक्ष्म स्वरूप कितना है, स्वप्न ये इनर आंतरिक है ना सारा। देखो कहां सुधार की जरूरत, किस कोने में गंदगी है, कहीं बाबा के बच्चे कहते हैं ना क्या पुरुषार्थ करना है, पवित्र बन गए, शुद्धन खा रहे हैं, रोज क्लास कर रहे हैं, अब क्या करना है और क्या करना है। अटेंशन देना है। अब का पुरुषार्थ मेहनत का नहीं है, अवेयरनेस का है, जागृति चाहिए। ये सब प्योर रिफाइन क्वालिटी बनाना, आज विज्ञान क्या कर रहा है, रिफाइननेस, हर चीज में रिफाइननेस, क्वालिटी, माइक्रो, सूक्ष्म और पावरफुल, हर चीज कॉम्पैक्ट, एक से अनेक गुना फायदा। विज्ञान वही कर रहा है, हमें क्या करना है। हम साइलेंस की शक्ति वाले हैं, हमारी जिम्मेवारी कौन सी है, विज्ञान की जिम्मेवारी विनाश करने की। विनाश के बारे में हमें नहीं सोचना है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, हमारा कार्य कौन सा है, स्थापना, खुद को देवता बनाना और विश्व को स्वर्ग बनाना, हमारा काम वो है। हमें फोकस कहाँ होना है, मम्मा ने क्या कहा, मुस्कुराने की दुनिया में जा रहे हो तो वहीं ध्यान देना है, वैसे लक्षण धारण करते वो अटेंशन। फरिश्ता बनना माना हवा में उड़ना नहीं, कई बेचारे पूछते हैं कि मैं तो उड़ता ही नहीं हूं दीदी क्या करूं, तो कोई उड़ना थोड़ी है, रिफाइननेस आने से लाइट बन जाएंगे अपने आप, ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे, वो फरिश्ता, जीवन में छिपाने जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। अंदर बाहर साफ और श्रेष्ठ, इसलिए बाबा कहता है अंत तक पुरुषार्थ कर। अब बताओ कौन कौन फरिश्ता बनने तैयार है? मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? अब जो तैयार हो वो एक दो को देखे बिगर, बाबा को देख के हाथ करो कि कौन कौन तैयार है। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। ओम शांति।
ओम शांति। ऑपरेशन हुआ, जीवित का ऑपरेशन तो हर कोई करता है, लेकिन दीदी ने किसका किया? ब्राह्मण माना मर जीवा जीवन, तो जो हम पुरानी दुनिया से मर चुके हैं उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेट हुए, अंदर गए, दीदी ने थिएटर रूम में कुशल सर्जन बनके हम सबको
मैं नहीं करती हूं, बाबा करते
हैं। अटेंशन खिंचवाया बाबा के खजाने को ही दीदी, हम जो अस्त व्यस्त हमारी जिंदगी में पड़ा था उसको आपने व्यवस्थित किया। दिल से सबका मन एकदम फूल की तरह हल्का हो गया, और वो हल्कापन ही सभी भाई बहनों को फरिश्ता बनने का हौसला दे रहा है ना? हमने, आप सबने दीदी को पहले ही हाथ उठा के धन्यवाद कर दिया है कि दीदी हम इस ब्राह्मण जीवन में फरिश्ता अवश्य बनेंगे, सच्चे पक्के ब्राह्मण बनकर ही रहेंगे। बहुत सुंदर चित्रण के साथ अंतर्मुक्ता की गुफा मोहन भट्टी में दीदी ले गई, और वो दर्शन, वो दिग्दर्शन हमें किया है, हम इसको संजो के रखेंगे। हाँ, अभी जैसे दीदी ने कहा हमारा मौन है, साइलेंस में रहेंगे और इसको अंदर में जाकर और खोजबीन करेंगे। ये तो स्टार्टिंग हुई है, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद अगला क्लास होगा, तो समय से हम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने इतना सुंदर मार्मिक ढंग से प्यारे बाबा की शिक्षा, आज्ञा, फरमान, डायरेक्शन को मुस्कुराते हुए पालन करना हमको सिखा दिया। थैंक यू दीदी।
ओ बाबा तुम बनना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।